अध्याय 11 यहूदियों का षड्यंत्र। प्रभु यीशु द्वारा सूबेदार के सेवक की चंगाई। और जब यीशु लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था लकवे के रोग से पीड़ित था और मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा, मेरा दास घर में बहुत बीमार है, ताकि वह आकर उसे चंगा करे। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए एक आराधनालय को बनाया है। यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा बालक अर्थात सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे को आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूं यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों को पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार के मित्रों से कहा, अब तुम जाकर सूबेदार से कह दो, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को उसी घड़ी चंगा पाया। प्रभु यीशु द्वारा विधवा के इकलौते पुत्र का जिलाया जाना। थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई कर कहने लगे, हमारे बीच एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना अपने दूतों को प्रभु यीशु के पास भेजता है, और यूहन्ना को उसके चेलों ने बंदीगृह में उन सब बातों का समाचार दिया जिन्हें यीशु कर रहा था। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया था, और बहुत से अंधों को आंखें दी थी। और यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो व्यक्ति जो मुझ पर अविश्वास ना करे, मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास में रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं, तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हां, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा कोई नहीं है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं, क्योंकि यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यद्वाणी करते रहे। और यदि तुम चाहो तो इसे मानो, एलिय्याह जो आने वाला था वह यही है, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। तब प्रभु ने कहा, मैं इस समय के लोगों की तुलना किससे करूं और इनकी उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुली बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना दाख मधु पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। एक फरीसी के घर में प्रभु यीशु का भोजन करना। पर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह मनुष्य भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह उसे जो छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। और यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। मुझे बताओ कि उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। और उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को प्रबल रूप से चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? परंतु उसने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने वाली स्त्रियां। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 चेले उसके साथ थे। और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकाली गई थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योहन्ना और सुसना और बहुत सी और स्त्रियां जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। न्याय की चेतावनियां। तब वह उन नगरों को उलाना देने लगा जिनमें से उसने बहुत तेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बिथसेदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर वे कब के मन फिराते। और हे कफरनहम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि वे सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा और सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। थके मंदों को विश्राम के लिए प्रभु यीशु का आह्वान। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद में भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों में छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहूदी अगुओं द्वारा प्रभु यीशु का अस्वीकरण। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे चंगा किया, और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने जो यरूशलेम में आए थे यह कहा, उसमें शैतान है, और यह भी कि वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। उसने उनके मन की बात जानकर उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है? वह बना ना रहेगा। और यदि किसी नगर या घर में फूटे पड़े तो वह नगर या घर स्थिर नहीं रह सकता, वह नाश हो जाता है। और यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है? और ना ही उसका राज्य, परंतु उसका भी अंत हो जाएगा। और फिर भी तुम मेरे विषय में कहते हो कि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता हूँ। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो कोई मनुष्य उस बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि उससे बढ़कर कोई और बलवंत व्यक्ति उस पर चढ़ाई करके उसे जीत ना ले, और उससे वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन ना ले और उसे बांध ना ले। और तब वह बलवंत के घर में घुसकर उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह वास्तव में बिथराता है। अक्षम्य पाप। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप और मनुष्य पुत्र के विरोध में निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। उसने ऐसा कहा क्योंकि वह यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। या तो एक अच्छा पेड़ और उससे अच्छे फल रखो, या फिर एक निकम्मा पेड़ और उसके निकम्मे फल, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा।